हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चौहान फैमिली वेद की शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। वेद ने उन्हें शादी की रस्मों को करने से मना कर दिया था। इसके बावजूद आराध्या और नव्यांशी ने मिलकर शिवांशा की पहली रसोई की तैयारी की थी। उन्होंने शिवांशा के लिए वेद की माँ शोभा जी द्वारा तैयार करवाई गई साड़ी और गहने भिजवाए थे। वेद ने जैसे ही उस साड़ी को अपने कमरे में देखा, वो गुस्सा हो गया। इससे पहले कि शिवांशा उस साड़ी को ठीक से देख तक पाती, वेद ने उसे उसके हाथ से छीन लिया था। वेद के लिए गहनों का कोई मोल नहीं था, पर वो साड़ी शोभा जी ने खास वेद की दुल्हन के लिए बहुत दिल से तैयार करवाई थी। वेद ने उस साड़ी को अपनी अलमारी में रख दिया था। शिवांशा को कपड़े और गहने भिजवाए हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, फिर भी वो नीचे नहीं आई थी। आराध्या और नव्यांशी रस्म के लिए उसका इंतजार कर रही थीं। नव्यांशी को किसी का इंतजार करने की आदत नहीं थी, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। नव्यांशी ने सिर हिलाकर कहा, कहीं वो ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रही। उसे ये तो नहीं लग रहा ना कि हम वेद भैया की बात बिना किसी शिकायत के मानते हैं तो उसकी मनमानियों को भी सहेंगे। अभी तो उसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और वो आते ही अपने नखरे दिखाने लगी। शांत हो जाओ नवी, वो अभी इस घर में नई है और इस घर के कायदे कानून के बारे में उसे नहीं पता होगा। हमें अभी उसे जज नहीं करना चाहिए, आराध्या ने उसे समझाते हुए कहा। फिर आराध्या ने रानी की तरफ देखा, जो किचन में ही व्यस्त थी। उसने रानी से कहा, तुमने भाभी को सब बता तो दिया था ना कि हम पहली रसोई की रस्म करने वाले हैं, कहीं वो किसी गलत फहमी में तो नहीं है? मैंने बताया तो था, लेकिन उनकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो नीचे खाना बनाने आ पाएगी। मतलब वेद भैया उन्हें छोड़ेंगे तो वो आएगी ना, रानी ने हंसकर कहा। तो नव्यांशी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। अपने काम से मतलब रखो और आगे से भाई के फ्लोर पर मत जाना, नव्यांशी ने रानी को डांटा तो रानी तुरंत चुप हो गई। नव्यांशी ने गहरी सांस ली और आराध्या से कहा, ऐसा कीजिए, आप जाकर बात कर लीजिए, इसे वापस भेजना सही नहीं होगा। आप समझदार हैं और ये अभी बच्ची है, बात ऐसे कीजिएगा कि उनकी प्राइवेसी इंटरेस्ट न हो। मैं नहीं चाहती कि भाई कुछ भी गलत समझें। आराध्या ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां का थोड़ा काम समेटने के बाद ऊपर जाने का सोचा। वहीं ऊपर कमरे में शिवांशा एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसने अभी भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वेद उसे फिर से अकेला छोड़कर चला गया था। आराध्या ऊपर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो शिवांशा भी जल्दी से दरवाज़ा खोला। आराध्या उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो अभी भी शादी के जोड़े में थी। आपने चेंज नहीं किया भाभी, रानी ने बताया नहीं कि हम पहली रसोई की रस्म करने वाले हैं, आराध्या ने हैरानी जताते हुए हल्की तेज़ आवाज़ में कहा। एक पल के लिए आराध्या को नव्यांशी की बात कहीं न कहीं सही लगने लगी। उसे लगा कि शिवांशा ये सोच रही होगी कि वेद सबसे बड़ा है और उसके ओहदे के हिसाब से घर में बड़ा होने के कारण वो अपनी मनमानी करेगी। वहीं आराध्या के तेज बोलने पर शिवांशा डर गई थी। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसने मुझे सब बता दिया था। अगर ऐसा है तो आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या भाई की तरह आपके लिए भी हमारी इमोशंस कोई मायने नहीं रखते? आराध्या ने हल्के गुस्से में कहा। शिवांशा सब जानती थी और फिर भी तैयार नहीं हुई, ये जानकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। शिवांशा ये भी नहीं बता सकती थी कि वेद ने उसके हाथ से साड़ी छीन ली थी। उसने नजरें नीचे की और कहा, वो साड़ी बहुत हैवी थी, ऊपर से मुझे साड़ी बांधना भी नहीं आता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो साड़ी खराब हो जाए, मैं बस उसे संभाल कर रखना चाहती थी। बोलते हुए शिवांशा की आंखें नम होने लगीं, तो आराध्या को अब अपनी सख्ती पर थोड़ा पछतावा होने लगा। आपने बिल्कुल सही किया जो उसे संभाल कर रखा, क्योंकि वो वाकई बहुत कीमती है। आप मुझे पहले बता देतीं कि आपको साड़ी पहनना नहीं आता, मैं आपकी हेल्प करने आ जाती, आराध्या ने थोड़ा नरमी से कहा। मुझे नहीं पता कि आपका कमरा कहाँ है, शिवांशा ने नजरें नीचे करके जवाब दिया। शिवांशा के दिल की सच्चाई उसकी आंखों और चेहरे से झलकती थी। कोई भी उसके मासूम चेहरे और आवाज़ को सुनकर पिघल सकता था। आराध्या को भी अब समझ आ गया था कि वेद को शिवांशा जैसी सीधी साधी लड़की से प्यार क्यों हुआ होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं दूसरी नॉर्मल साड़ी लेकर आती हूँ। इतना कहकर आराध्या जाने को हुई। अचानक वो रुकी और शिवांशा की तरफ पलट कर बोली, आपको कुकिंग तो आती है ना, कहीं ऐसा न हो कि फिर से आप कुछ बोलने में हिचकिचाएं और हमारी रस्म अधूरी रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है, शिवांशा ने जवाब दिया। आराध्या ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। अचानक वेद शिवांशा के सामने आ गया। वो पिलर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। झूठ बोलने में तो बहुत माहिर हो, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, वेद ने उस पर तंस कसते हुए कहा। आपने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ऐसे में अगर मैं सच बताती तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, शिवांशा ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, तो कुछ ही घंटों में तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने बिना डर के जवाब देने लगी। दूसरी बात, प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए खड़ी होने वाली है, वेद ने उसे घूरते हुए कहा। शिवांशा अब चुप हो गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो वेद को कह दे कि वो उसे मार डाले या अपनी फैमिली को सब बता दे। इस तरह हर पल उसकी इंसल्ट सहने और पल पल मरने से तो अच्छा ही था। शिवांशा और वेद कमरे के दरवाजे के पास खड़े बातें कर रहे थे। शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं तो वेद उसे एक टक देख रहा था। उन्हें साथ देखकर आराध्या तुरंत दूसरी तरफ पलट गई। वो बोली, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। ऐसा कीजिए भाभी, आप ये साड़ी पहन लीजिए और अगर आपको नहीं आता तो आप भाई की हेल्प ले लीजिएगा। अले नहीं, ऐसा, शिवांशा उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन वेद ने तुरंत आंखों के इशारों से उसे चुप रहने को कहा। वेद ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, जाओ जाकर साड़ी ले आओ। शिवांशा ने चुपचाप हर बार की तरह उसकी बात मानी और आराध्या के पास गई। साड़ी लेकर वो वापस कमरे में आ गई थी। शिवांशा ने साड़ी को खोलकर देखा तो इस बार आराध्या उसके लिए मैजेंटा पिंक कलर की बनारसी साड़ी लेकर आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि शिवांशा को अभी भी साड़ी पहनना नहीं आता था। उसने वेद की तरफ देखा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी किसी भी मामले में कोई हेल्प नहीं करने वाला, वेद ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। अगर ऐसा था तो आपने उन्हें जाने से रोका क्यों, वो मेरी हेल्प कर देती। अगर मैं टाइम से नहीं गई तो वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे, शिवांशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने उसे क्यों भेजा था। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ें। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, खुद ही निपटो और अगले 20 मिनट में नीचे पहुँच जाना, वेद ने बेरुखी से कहा और फिर वहाँ से चला गया। वेद ऐसे ही हर थोड़ी थोड़ी देर में आकर उसे कुछ न कुछ कहकर टॉर्चर कर रहा था। फिलहाल शिवांशा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी बातें सुनकर फिर से आंसू बहाए। उसने जल्दी से कपड़े लिए और बाथरूम में नहाने चली गई। शिवांशा ने जल्दी जल्दी नहाकर ब्लाउज पहना तो उसने नोटिस किया कि वो उसे लूज था। उसने जैसे तैसे पिन लगाकर उसे फिक्स किया।
एक तो वेद ने उसे 20 मिनट में नीचे जाने को कह दिया था, ऊपर से उसे साड़ी भी नहीं पहननी आती थी। शिवांशा ने जैसे तैसे साड़ी को लपेटा और जल्दी से बाहर आई। वो सिंदूर तक लगाना भूल गई थी। उसने अभी भी गले में सिर्फ वेद का चेन और पेंडेंट पहना हुआ था जो उसके मिड चेस्ट तक आ रहा था। बिना किसी गहने और उस उलझी साड़ी के साथ बालों को पीछे मैसी जूड़े में बांधने के बाद वो गिरने के डर से आड़े टेढ़े तरीके से चल रही थी। शिवांशा अपनी तरफ से तैयार होकर नीचे पहुंची तो सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसने चेहरे पर मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं लगाया था। ऊपर से जिस तरह उसने साड़ी को लपेटा था और बालों में मैसी बन बना रखा था, सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। आसपास काम करने वाले हाउस हेल्पर्स के चेहरों पर भी मॉकिंग स्माइल थी। आराध्या ने उनके चेहरों को नोटिस किया तो वो तेज और सख्त आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, सब अपने काम पर ध्यान दीजिए। फिर वो शिवांशा के पास आई और बोली, लगता है वेद भैया को भी साड़ी बांधनी नहीं आती। जी जी नहीं, शिवांशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया तो आराध्या हंसने लगी। मेरे साथ चलिए, इससे पहले कि लोग आपको देखकर हंसने लगें, आराध्या ने हंसकर कहा और फिर शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। आराध्या ने शिवांशा की साड़ी को सेट किया और उसके बालों को आगे से स्टाइल करके पीछे बन बना दिया ताकि काम करते वक्त बाल आगे न आए। मेकअप करना चाहेंगी, आराध्या ने पूछा, जिस पर शिवांशा ने नामे सिर हिला दिया। थोड़ा करवा लीजिए और अच्छी लगेंगी, आराध्या ने उसे चेयर पर जबरदस्ती बैठाते हुए कहा। आराध्या के ज्यादा इंसिस्ट करने पर शिवांशा ने पाउडर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप करवा लिया। हालांकि शिवांशा बिना किसी मेकअप के भी खूबसूरत लग रही थी, पर आराध्या नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात करने का जरा सा मौका मिले कि चौहान खानदान की बड़ी बहू उनके क्लास के हिसाब से नहीं है। शिवांशा ने ऊपर से उसके दिए हुए गहने भी नहीं पहने थे, न हाथ की चूड़ियां थीं न ही पैरों में पायल। आराध्या ने उसे चूड़ियां और पायल दी तो अचानक शिवांशा के मुंह से निकला, अरे नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगता जब ये शोर करती हैं। जब आराध्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी तो शिवांशा ने अपनी बात पर गौर किया। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। आराध्या उसके पास आई और उसे परेशान करते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा, और क्या नहीं पसंद है आपके उनको? हमें देर हो रही है ना, चलिए चलते हैं, शिवांशा ने उसे कालने के लिए कहा। उसका सवाल सुनकर उसके चेहरे पर हल्के मायूसी के भाव उभर आए थे और वो मन ही मन बोली, उन्हें तो मैं भी नहीं पसंद हूँ। कुछ ही देर में आराध्या शिवांशा को लेकर किचन में पहुंच चुकी थी। नव्यांशी भी वहां आ गई थी। एक बार फिर उसकी नज़र शिवांशा के गले में पड़े चेन और लॉकेट पर गई। न जाने क्यों उसे वो शिवांशा के गले में खल रहा था। नव्यांशी उसके पास आई और बोली, वैसे तो सब कुछ हो गया है, मीठा भी मैं बनवाने ही वाली थी, मुझे लगा आप आएंगी ही नहीं। अगर आपको खीर बनानी आती है तो आप बना लीजिए, वरना रानी बना देगी, आप बस हाथ लगा दीजिएगा। नहीं, मैं बना लूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। ठीक है, फिर सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इस बड़े वाले बाउल में हम सबके लिए ले आएंगी और इस छोटे बाउल में वेद भैया के लिए अलग से सर्व कर दीजिएगा। आपको पता है ना उनके बारे में सब, नव्यांशी ने सब कुछ समझाने के बाद पूछा। सबको यही लगता था कि वेद और शिवांशा की लव मैरिज हुई है, तो शिवांशा वेद के बारे में हर छोटी चीज जानती होगी। शिवांशा के पास जवाब में कुछ नहीं था तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांशा को लगा कि वेद को ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने कम पसंद होंगे, इस वजह से उसने वेद की खीर में कम ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे अलग से सजाया। फिर उसने बची हुई खीर में ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। उसने सबके लिए एक ही खीर बनाई थी और वो बनने के बाद उसे बाहर लेकर जा रही थी। शिवांशा नहीं जानती थी कि नव्यांशी का इशारा इस तरफ था कि वेद को डायबिटीज है और शुगर उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन सब से अनजान शिवांशा वेद के लिए भी वही चीनी वाली खीर लेकर जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वेद की बीमारी से अनजान शिवांशा ने उसके सामने खीर का बाउल रखा। सब उसी के पहले खाने का इंतजार कर रहे थे। वेद को भी सब नॉर्मल दिखाना था तो उसने बिना कुछ कहे खीर का एक बाइट लिया। तभी उसे समझ आ गया था कि शिवांशा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, चाहे वो अनजाने में की हो या जानबूझकर, लेकिन बात वेद की जान पर बनाई थी। एक निवाला खाते ही वेद को अपनी तबीयत में होने वाले बदलाव तुरंत महसूस होने लगे थे। लगता है शिवांशा ज्यादा दिनों तक अपना सच छुपा नहीं पाएगी। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।